मैं प्रज्ञा गोदियाल एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा, बीए प्रथम वर्ष के दर्शन विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन का रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। मेरा पहला चैप्टर है भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत और मेरा पहला टॉपिक है दर्शन क्या है। मनुष्य और पशु भी अपने अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। पशु का जीवन प्राय निरुद्देश्य होता है, यह सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। वह अपना तथा संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहता है। वह केवल अपने वर्तमान लाभ के संबंध में ही नहीं सोचता है, किंतु भविष्य के परिणामों के विषय में भी सोचता है। मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि की सहायता से वह युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। मनुष्य क्या है, उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, या संसार क्या है, इसका कोई सृष्टा भी है, मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन्हें प्रायः अनेक देशों के मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही सुलझाने की चेष्टा करते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार हमें तत्व का साक्षात्कार हो सकता है, इसी को सम्यक दर्शन या दर्शन कहते हैं। मनु का कथन है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में डाल नहीं सकते। जिनको यह सम्यक दृष्टि नहीं है, वे ही संसार के जाल में फंस जाते हैं। मेरा दूसरा टॉपिक है भारतीय दर्शन का अर्थ तथा उसकी व्यापकता। प्राचीन तथा अर्वाचीन, हिंदू तथा अहिंदू, आस्तिक तथा नास्तिक, जितने प्रकार के भारतीय हैं, सबों के दार्शनिक विचारों को भारतीय दर्शन कहते हैं। कुछ लोग भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन का पर्याय मानते हैं, किंतु यदि हिंदू शब्द का अर्थ वैदिक धर्मावलंबी हो तो भारतीय दर्शन का अर्थ केवल हिंदुओं का दर्शन समझना अनुचित होगा। इस संबंध में हम माध्वाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह का उल्लेख कर सकते हैं। माध्वाचार्य स्वयं वेदानुयायी हिंदू थे। उन्होंने उपयुक्त ग्रंथ में चार्वाक, बौद्ध तथा जैन मतों को भी दर्शन में स्थान दिया। इन मतों के प्रवर्तक वैदिक धर्मानुयायी हिंदू नहीं थे, फिर भी इन मतों को भारतीय दर्शन में वही स्थान प्राप्त है जो वैदिक हिंदुओं के द्वारा प्रवर्तित दर्शनों को है। भारतीय दर्शन की दृष्टि व्यापक है। यद्यपि भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएं हैं तथा उनमें मतभेद भी है, फिर भी वे एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करती हैं। सभी शाखाएं एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयत्न करती हैं। वे विचारों की युक्तिपूर्वक समीक्षा करती हैं और तभी किसी सिद्धांत पर पहुंचती हैं। इसी उदार मनोवृत्ति का फल है कि भारतीय दर्शन में विचार विमर्श के लिए एक विशेष प्रणाली की उत्पत्ति हुई। इस प्रणाली के अनुसार पहले पूर्व पक्ष होता है, तब खंडन होता है तथा अंत में उत्तर पक्ष या सिद्धांत होता है। पूर्व पक्ष में विरोधी मत की व्याख्या होती है, उसके बाद उसका खंडन या निराकरण होता है, अंत में उत्तर पक्ष आता है जिसमें दार्शनिक अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इस उदार दृष्टि के कारण भारतीय दर्शन की प्रायः प्रत्येक शाखा अत्यंत समृद्ध है। उदाहरण के लिए हम वेदांत का उल्लेख कर सकते हैं। वेदांत में चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि सभी मतों पर विचार किया गया है। यह रीति केवल वेदांत में ही नहीं किंतु अन्य दर्शनों में भी पाई जाती है। वस्तुतः भारत का प्रत्येक दर्शन ज्ञान का एक एक भंडार है। यही कारण है कि जिन विद्वानों को केवल भारतीय दर्शन का ज्ञान भली भांति प्राप्त है, वे बड़ी सुगमता से पाश्चात्य दर्शन की जटिल समस्याओं का भी समाधान कर लेते हैं। भारतीय दर्शन की उदार दृष्टि ही उसकी प्राचीन समृद्धि तथा उन्नति का कारण है। भारतीय दर्शन यदि अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहता है तथा उसे सुदृढ़ बनाना चाहता है, तो उसे प्राच्य तथा पाश्चात्य, आर्य तथा अनार्य, यहूदी तथा अरबी, चीनी तथा जापानी सभी दार्शनिक मतों का पूर्ण विवेचन करना चाहिए। अपनी ही विचार परंपरा में सीमित रह जाने से उसकी पुष्टि और वृद्धि नहीं हो सकती। मेरा तीसरा टॉपिक है भारतीय दर्शन की शाखाएं। प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार भारतीय दर्शन दो भागों में बांटे गए हैं, आस्तिक और नास्तिक। मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इन्हें षड् दर्शन भी कहा जाता है। आस्तिक दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी नहीं है। इन दर्शनों में सभी ईश्वर को नहीं मानते हैं। इन्हें आस्तिक इसलिए कहा जाता है कि ये सभी वेद को मानते हैं। मीमांसा और सांख्य ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी वे नास्तिक आस्तिक कहे जाते हैं क्योंकि वे वेद को मानते हैं। इन छह आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त और भी कई आस्तिक दर्शन हैं, यथा शैव दर्शन, पाणिनीय दर्शन, रसेश्वर दर्शन इत्यादि। इन दर्शनों का उल्लेख माध्वाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में किया है। नास्तिक दर्शन तीन हैं, चार्वाक, बौद्ध तथा जैन। ये नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि ये वेदों को नहीं मानते। आधुनिक भारतीय साहित्य में आस्तिक का अर्थ है ईश्वरवादी तथा नास्तिक का अर्थ है अनिश्वरवादी, किंतु प्राचीन दार्शनिक साहित्य के अनुसार आस्तिक का अर्थ वेदानुयायी तथा नास्तिक का अर्थ वेद विरोधी है। प्राचीन दार्शनिक साहित्य के अनुसार इन दोनों शब्दों में से प्रत्येक का एक दूसरा भी अर्थ है। इस दूसरे अर्थ के अनुसार आस्तिक परलोक में विश्वास रखने वाले को तथा नास्तिक परलोक नहीं मानने वाले को कहते हैं। ऊपर के वर्गीकरण के अनुसार मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक को आस्तिक दर्शन इसलिए कहा गया है कि ये वेदों को मानते हैं। भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण यदि परलोक में विश्वास के अनुसार किया जाए तो जैन तथा बौद्ध दर्शन भी आस्तिक दर्शन कहे जाएंगे क्योंकि वे भी परलोक को मानते हैं। सर्व दर्शन को दोनों ही अर्थों में आस्तिक कह सकते हैं, अर्थात वे वेद को मानने के कारण भी आस्तिक हैं तथा परलोक को मानने के कारण भी आस्तिक हैं। चार्वाक दर्शन दोनों में से किसी भी अर्थ में आस्तिक नहीं कहा जा सकता, वह न तो वेद को मानता है न परलोक को मानता है, अतः दोनों ही अर्थों में नास्तिक है। आस्तिक तथा नास्तिक की भिन्नता समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि भारतीय विचार परंपरा में वेद का क्या स्थान है। वेद भारत का आदि साहित्य है। वेद के बाद की जो भारतीय विचारधारा चली वह वेद से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। दार्शनिक विचारधारा पर तो इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। भारतीय दर्शन पर वेद का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा है। हम ऊपर कह आ गए हैं कि कुछ दर्शन वेद को मानते हैं तथा कुछ वेद को नहीं मानते। वेद को मानने वाले छह दर्शन शर दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें मीमांसा और वेदांत तो वैदिक संस्कृति की ही देन है। वेद में दो विचारधाराएं थी, एक का संबंध कर्म से था और दूसरे का ज्ञान से। ये क्रमशः वैदिक कर्मकांड तथा वैदिक ज्ञान कांड के नाम से विदित हैं। मीमांसा में कर्मकांड का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन हुआ है, वेदांत में ज्ञान कांड का पूरा विवेचन किया गया है और इस तरह वेदांत जैसे एक विशाल दर्शन की सृष्टि हुई है। चूंकि मीमांसा और वेदांत में वैदिक विचारों की मीमांसा हुई है इसलिए दोनों को कभी कभी मीमांसा कहते हैं। वेद के लिए मीमांसा को पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा तथा वेदांत को उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा कहते हैं। इस पुस्तक में हम इन्हें क्रमशः मीमांसा और वेदांत ही कहेंगे क्योंकि ये ही नाम विशेष प्रचलित हैं। सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों की उत्पत्ति वैदिक विचारों से नहीं हुई है। इनकी उत्पत्ति लौकिक विचारों से हुई है, किंतु इस कथन से यह नहीं समझना चाहिए कि ये वेद विरोधी थे। इनके सिद्धांतों में तथा वैदिक विचारों में पारस्परिक विरोध नहीं था। वैदिक संस्कृति के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएँ हुई थी उनसे चार्वाक, बौद्ध तथा जैन दर्शनों की उत्पत्ति हुई। ये वेद को प्रमाण नहीं मानते थे, ये वेद विरोधी थे। उपयुक्त विचारों का संक्षेप नीचे लिखे ढंग से किया जा सकता है। भारतीय दर्शन के दो, वेद विरोधी दर्शन और वेदानुकूल दर्शन। फिर वेद विरोधी दर्शन के दो भाग किए गए हैं, वैदिक विचारों से उत्पन्न और लौकिक विचारों से उत्पन्न। फिर वैदिक विचारों से उत्पन्न भी दो पर आधारित है, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा पर आधारित कर्मकांड पर आधारित और वेदांत पर आधारित ज्ञान कांड पर। फिर भारतीय दर्शन को दो भागों में किया गया है, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक अपरलोकवादी और आस्तिक परलोकवादी। इसका चौथा टॉपिक है भारतीय दर्शन में आप्तवचन तथा युक्ति का स्थान। ऊपर हमने भारतीय दर्शनों की कुछ भिन्नताओं पर विचार किया है। उन भिन्नताओं का संबंध बहुत अंशों में दर्शनों की विचार प्रणालियों से है। संसार का मूल कारण क्या है, ईश्वर है या नहीं? ईश्वर का क्या स्वरूप है, ऐसे ऐसे दार्शनिक प्रश्नों का समाधान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रश्नों के समाधान के लिए कल्पना तथा युक्ति का आश्रय लेना नितांत आवश्यक है। विज्ञानों की तरह दर्शन में भी प्रत्यक्ष की सहायता से अप्रत्यक्ष का प्रतिपादन होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन का आधार है तथा युक्ति उसका प्रमुख साधन है। यह पूछा जा सकता है कि किसका प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन का आधार है, जन साधारण का या आप्त पुरुषों का? भारतीय दार्शनिकों में इस संबंध में दो मत हैं। एक मत के अनुसार दर्शन शास्त्र जन साधारण के प्रत्यक्षानुभव पर आधारित है। यूरोप के अधिकांश विद्वान इसी मत को मानते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य तथा चार्वाक भी इसी मत को मानते हैं। बौद्ध तथा जैन भी अधिकांशतः यही मानते हैं, किंतु अनेक दार्शनिक इस मत का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर, मोक्ष आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान लौकिक ज्ञान के आधार पर नहीं प्राप्त हो सकता। इसके लिए आप्त पुरुषों का अनुभव अधिक उपयोगी है, क्योंकि आप्त पुरुषों को इन विषयों का साक्षात अनुभव होता है। अतः दर्शन का आधार आप्त वचन या धर्म ग्रंथ ही हो सकते हैं। मीमांसा और वेदांत का यही मत है। इनके अनेक सिद्धांत वेदों तथा उपनिषदों पर आधारित हैं। बौद्ध तथा जैन दर्शन भी आप्त वचन की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार बुद्ध देव तथा तीर्थकर सर्वज्ञ थे, अतः उनके वचन सर्वथा सत्य थे। यूरोप में भी मध्य युग के ईसाई धर्म संप्रदाय अपने धर्म ग्रंथों को ही दर्शन का आधार मानते थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय दर्शनों में दर्शन के आधार के संबंध में दो मत हैं, परंतु आधार की भिन्नता रहने पर भी दोनों ही मतों में युक्ति को ही विचार का प्रथम साधन माना गया है। अंतर केवल युक्ति के प्रयोग में है। न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों पर युक्ति का प्रयोग लौकिक अनुभव पर होता है, किंतु मीमांसा, वेदांत आदि दर्शनों में उसका प्रयोग सामान्यतः आप्त वचनों के समर्थन तथा उनकी पुष्टि के लिए होता है। कुछ लोगों का कथन है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति स्वतंत्र विचार से नहीं हुई है, वरन आप्त वचनों से हुई है। अतः भारतीय दर्शन युक्ति से प्रतिपादित नहीं है, वरन युक्तिहीन है। यह आक्षेप सभी भारतीय दर्शनों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। भारतीय दर्शनों में स्वतंत्र विचार का प्रयोग प्रायः उसी भांति हुआ है जिस भांति वर्तमान समय के पाश्चात्य दर्शनों में होता है। यद्यपि यह आक्षेप मीमांसा और वेदांत के विरुद्ध अवश्य लगाया जा सकता है, क्योंकि वे आप्त वचनों का अनुसरण करते हैं, तथापि स्वतंत्र विचार के द्वारा ही इनके सिद्धांतों की पुष्टि हुई है। आप्त वचनों को यदि इनसे हटा दिया जाए तो भी ये दृढ़ रहेंगे। यदि इनकी तुलना अन्य देशों के केवल युक्ति प्रतिपादित सिद्धांतों से की जाए तो ये न्यून नहीं सिद्ध होंगे। मनुष्य विचारशील होता है, अतः वह तब तक किसी विषय का स्वीकार नहीं करता जब तक वह युक्ति संगत नहीं होता। किंतु यदि कोई दार्शनिक विचार युक्ति से प्रतिपादित होने के साथ साथ मार्जित बुद्धि तथा शुद्ध चित्त महापुरुषों की अनुभूतियों का समर्थन पाता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय दर्शनों का क्रमिक विकास। यूरोपीय दर्शन के इतिहास से पता चलता है कि यूरोप के दर्शनों की उत्पत्ति एक साथ नहीं वरन एक दूसरे के पश्चात होती गई है। कुछ समय तक एक दर्शन का प्रचार रहता है, इसके बाद किसी दूसरे मत का उत्थान होता है। भारतीय दर्शनों का विकास इस तरह नहीं हुआ है, उसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति एक ही समय में नहीं हुई है, किंतु इसका विकास शताब्दियों तक साथ साथ होता रहा है। भारत में दर्शन को जीवन का एक अंग माना गया है। यहाँ ज्यों ही किसी दार्शनिक मत का प्रतिपादन होता था, त्यों ही उनके अनुयायियों का संप्रदाय स्थापित हो जाता था। संप्रदाय के सभी सदस्य उस दार्शनिक विचार को अपने जीवन का अंग मानते थे तथा उसी के अनुसार अपना जीवन बिताते थे। किसी संप्रदाय की एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के लोग उसका अनुकरण करते थे और इस प्रकार उस संप्रदाय की एक अविच्छिन्न परंपरा बनी रहती थी। यही कारण था कि भारत के विभिन्न दर्शन निरंतर कई शताब्दियों तक प्रचलित रहे। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भारतीय दर्शन का विकास आधुनिक काल में प्रायः बंद सा हो गया था। अभी पुनः भारतीय दर्शन का जागरण हो रहा है। जैसा पहले कहा जा चुका है, भारतीय दर्शन अपने अपने क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहते थे, वरन उसमें पारस्परिक आलोचनाएं चलती रहती थी। वस्तुतः भारतीय दर्शनों में प्रतिपक्षी के आक्षेप का युक्तिपूर्वक खंडन करने की एक प्रथा चल गई थी। इसी पारस्परिक आलोचना के फलस्वरूप भारत में सहस्त्रों दार्शनिक ग्रंथों की रचना हो गई है। आलोचना प्रत्यालोचना का एक दूसरा परिणाम यह हुआ है कि भारतीय दार्शनिकों में अपने विचारों को स्पष्ट तथा अभ्रांत रूप से व्यक्त करने का एक व्यसन हो गया है। अपने विचारों को सर्वथा दोष रहित तथा आक्षेपहीन बनाने के लिए वे स्वभावतः प्रयत्न करते थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन की समुचित आलोचना उसी के भीतर पाई जाती है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय दर्शनों में विचारों के आदान प्रदान की प्रथा थी। अब हमें जानना चाहिए कि भारतीय दार्शनिक साहित्य की उत्पत्ति तथा वृद्धि किस प्रकार हुई। हम पहले कह आए हैं कि अधिकांश दार्शनिक मतों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से हुई है। आस्तिक दर्शनों के साहित्य के इतिहास से ज्ञात होता है कि वेद तथा उपनिषद के बाद सूत्र साहित्य की उत्पत्ति हुई है। दार्शनिक विचारों का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप सर्वप्रथम सूत्र साहित्य में ही पाया जाता है। सूत्र शब्द का अर्थ है सूत, किंतु उपयुक्त प्रसंग में सूत्र का अर्थ संक्षिप्त स्मृति सहायक उक्ति है। प्राचीन समय में दार्शनिक विवेचन मौखिक होता था, गुरु शिष्यों में भी विचार विनिमय मौखिक ही हुआ करता था। अतः यह आवश्यक था कि दार्शनिक समस्या को उनके आक्षेपों तथा समाधानों को स्मरण रखने के लिए संक्षिप्त रूप दिया जाए। इसी प्रकार सूत्र ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। सूत्र ग्रंथ विषय भेद के अनुसार अध्याय पाद अधिकरण आदि में विभक्त रहता है। वादरायण के ब्रह्म सूत्र में वेदों के विशेषता उपनिषदों के दार्शनिक विचारों का संग्रह है तथा उन्हें एक सुव्यवस्थित रूप में दिया गया है। वेद तथा उपनिषद के दार्शनिक विचारों के विरुद्ध जो आक्षेप किए गए हैं उनका समाधान भी ब्रह्म सूत्र में किया गया है। ब्रह्म सूत्र ही वेदांत का सबसे पहला क्रमबद्ध ग्रंथ है। इसी तरह मीमांसा के लिए जैमिनी ने, न्याय के लिए गौतम ने, वैशेषिक के लिए कणाद ने, योग के लिए पतंजलि ने सूत्र ग्रंथों की रचना की है। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य सूत्र के रचयिता कपिल ही समझे जाते हैं, किंतु सांख्य सूत्र जो आजकल प्राप्त है वह कपिल का मूल ग्रंथ नहीं माना जाता है। प्राप्त ग्रंथों में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका ही सांख्य की सबसे प्राचीन और प्रमाणिक रचना समझी जाती है। सूत्र अत्यंत संक्षिप्त सारगर्भित एवं व्यापक होते थे। अनेक विषयों को सूचित करने के कारण इन्हें सूत्र कहा गया है, परंतु उनका अर्थ सहज बोधगम्य नहीं होता था, अतः उनकी व्याख्या के लिए टीकाएं हुई। सूत्र ग्रंथ की टीका को भाष्य कहते हैं। भाष्यों के नामों तथा अन्य विशेषताओं के संबंध में आगे वर्णन किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कभी कभी अनेक भाष्यकारों द्वारा व्याख्या किए जाने के कारण एक सूत्र ग्रंथ के भी अनेक भाष्य हुए। भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्यों में अपने अपने मतों की पुष्टि की। उदाहरणार्थ शंकर, रामानुज, श्रीकंठ, मध्व, वल्लभ, निम्बार्क, बलदेव आदि भाष्यकारों ने ब्रह्म सूत्र के भिन्न भिन्न भाष्य लिखे। भाष्य भेद के अनुसार वेदांत के अनुयायियों की अलग अलग गोष्ठियाँ बनी। इस प्रकार वेदांत की अनेक शाखाएं हो गई। ये शाखाएं आजकल भी विद्यमान हैं। भाष्य युग के भाषाओं की भी व्याख्याएं लिखी गई। दर्शनों के आक्षिप्त विवरण के लिए तथा उनकी व्याख्या एवं आलोचना के लिए स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए। आस्तिक दर्शनों के साहित्य का यही संक्षिप्त इतिहास है। नास्तिक दर्शनों के विकास का इतिहास भी प्रायः इसी प्रकार है, किंतु उनका विकास सूत्र भाष्य के क्रम से नहीं हुआ है। उनके विकास का विवरण यथा स्थान आगे दिया जाएगा। यूं तो भारतीय दर्शनों में सिद्धांतों की अनेक भिन्नताएं हैं, फिर भी उनके अंतर्गत सामंजस्य भी है। सभी व्यक्ति सभी कार्यों के योग्य नहीं होते, विशेषतः धार्मिक दार्शनिक तथा सामाजिक विषयों के लिए योग्यता अनुसार अधिकार भेद होता है। जितने भारतीय दर्शन हैं सभी मानव व्यावहारिक जीवन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन हैं। चार्वाक के भौतिकवाद से लेकर शंकर के वेदांत तक जितने दर्शन हैं सभी योग्यता तथा स्वभाव के अनुसार विचारमय जीवन बिताने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इसी कारण विभिन्न दर्शनों से अन्यायियों का अधिकार भेद निरूपित होता था, किंतु इससे यह स्पष्ट है कि सभी दर्शन व्यवहार के योग्य होते थे। इसके अतिरिक्त भी भारतीय दर्शनों में और अनेक बातें हैं जिन्हें हम भारतीय संस्कृति की विशेषता कह सकते हैं। इसका छठा टॉपिक है भारतीय दर्शनों की विशेषताएँ। दर्शन ही किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति को गौरवपूर्ण करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान विशेष के प्रचलित विचारों से होती है, अतः दर्शन में स्थानीय विचारों की छाप अवश्य पाई जाती है। भारतीय दर्शनों में मतभेद तो पाया जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति की छाप रहने के कारण उनमें साम्य भी पाया जाता है। इस साम्य को हम भारतीय दर्शनों का नैतिक तथा आध्यात्मिक साम्य कह सकते हैं। भली भांति समझने के लिए इसके मुख्य मुख्य लक्षणों का विचार करना परम आवश्यक है। मूलभूत दर्शनों का सबसे महत्वपूर्ण तथा मूलभूत साम्य यह है कि वे सभी पुरुषार्थ साधन के लिए हैं। इसका विचार अंशतः हम ऊपर कर चुके हैं। भारत के सभी दर्शन मानते हैं कि दर्शन जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, अतः जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए दर्शन का परिशीलन नितांत आवश्यक है। दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति नहीं है, बल्कि किस प्रकार मनुष्य दूरदृष्टि, भविष्य दृष्टि तथा अंतर्दृष्टि के साथ जीवन यापन कर सके, इसी की शिक्षा देनी है। यही कारण है कि भारत के ग्रंथकार अपने अपने ग्रंथों के प्रारंभ में यह बता देते हैं कि उनके ग्रंथों से पुरुषार्थ साधन में क्या सहायता मिल सकती है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि भारतीय दर्शन केवल नीतिशास्त्र धर्मशास्त्र है, यह सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है। भारतीय दर्शनों में व्यवहारिक उद्देश्य अवश्य है, किंतु हम इसका मिलान नीति शास्त्र से नहीं कर सकते। भारतीय दर्शनों में युक्ति विचार की उपेक्षा नहीं की गई है। भारतीय तत्व विज्ञान, प्रमाण विज्ञान तथा तर्क विज्ञान के विचारों की दृष्टि से किसी भी पाश्चात्य दर्शन से हीन नहीं है। भारतीय दर्शनों के व्यवहारिक उद्देश्य की प्रधानता का कारण इस प्रकार है। संसार में अनेक दुख हैं जिनसे जीवन सर्वथा अंधकारमय बना रहता है। दुखों के कारण मन में सर्वथा अशांति बनी रहती है। मानसिक अशांति से विचार की उत्पत्ति होती है। वेदानुकूल या वेद विरोधी जितने भी दर्शन हैं, सब में दुख निवारण के लिए ही विचार की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के दुखों का क्या कारण है, इसे जानने के लिए भारत के सभी दर्शन प्रयत्न करते हैं। दुखों का किस तरह नाश हो, इसके लिए सभी दर्शन संसार तथा मनुष्य के अंतर्निहित तत्वों का अनुसंधान करते हैं। नैराश्य मन की एक प्रवृत्ति है जो जीवन को विषाद में समझती है। कुछ लोगों का कथन है कि भारतीय दर्शन पूरा नैराश्यवादी है, अतः व्यवहारिक जीवन पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, किंतु यह विचार सर्वथा असत्य है। हाँ, भारतीय दर्शन इस अर्थ में अवश्य नैराश्यवादी है कि वह संसार की वस्तु स्थिति को देखकर चिंतित और व्यथित हो जाता है, किंतु वह यथार्थता निराश नहीं होता, वरन संसार की दुखमय परिस्थिति को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न करता है। मनुष्य साधारणतः अपने उद्वेगों एवं तृष्णाओं के वंशीभूत हो जीवन व्यतीत करता है। उसके उद्वेग अज्ञान से भरे होते हैं तथा उसकी तृष्णाएं सहज शांत नहीं होती हैं। फल यह होता है कि उसके दुखों का अंत नहीं होता है, वे अधिकाधिक बढ़ते जाते हैं। कोई भी दर्शन इस प्रकार जीवन को सर्वथा दुखमय बताकर निश्चिंत नहीं हो सका। भारतवर्ष का प्राचीन नाटक भी शायद ही दुखांत होता था। यह भी भारतीय दार्शनिक विचारधारा का ही प्रभाव जान पड़ता है। हम अज्ञानवश जिन दुखों को भोग करते हैं, उनका विशद वर्णन भारतीय दर्शनों में अवश्य किया गया है, किंतु साथ साथ उनसे आशा का संदेश भी मिलता है। इन विचारों का सारांश महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्यों में पाया गया है। महात्मा बुद्ध के समस्त ज्ञान का निचोड़ उनके आर्य सत्यों में पाया जाता है। ये इस प्रकार है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति नैराश्य से है, किंतु अंत में वह आशा का ही मार्ग दिखलाता है। युक्तिहीन आशावादी की अपेक्षा नैराश्यवाद का प्रभाव ही जीवन पर अधिक हितकर है। एक प्रख्यात अमेरिकन अध्यापक कहते हैं कि नैतिक दृष्टि से आशावाद नैराश्यवाद की अपेक्षा हेय प्रतीत होता है, क्योंकि नैराश्यवाद विपत्तियों से सावधान कर देता है, किंतु आशावाद झूठी निश्चिंतता में सुला देता है। भारतीयों में एक आध्यात्मिक मनोवृत्ति है जिससे वे सर्वथा निराश नहीं होते, वरन इसके कारण उनमें आशा का संचार होता रहता है। इसे हम विलियम जेम्स के शब्दों में आध्यात्मवाद कह सकते हैं। जेम्स साहब के अनुसार आध्यात्मवाद उसे कहते हैं जो विश्वास दिलाता है कि जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है और यह जिससे प्रचुर आशा मिलती है। हमारी जितनी आकांक्षाएं हैं उनमें नैतिक व्यवस्था की आकांक्षा भी सम्मिलित है। दांते और वर्ड्सवर्थ जैसे महाकवियों को नैतिक व्यवस्था के अस्तित्व में पूरा पूरा विश्वास था। यही कारण है कि उनकी कविताओं में एक अलौकिक शक्ति पाई जाती है जिससे पाठकों में स्फूर्ति बढ़ती है और उनके हृदय में आशा का संचार होता है। भारत के सभी दर्शनों में नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा का भाव वर्तमान है। चार्वाक का भौतिकवाद ही इसका एकमात्र अपवाद है। चार्वाक के अतिरिक्त और जितने भारतीय दर्शन हैं, चाहे वे वैदिक हों या अवैदिक, ईश्वरवादी हों या अनिश्वरवादी, श्रद्धा एवं विश्वास की भावना से ओतप्रोत हैं। यह नैतिक व्यवस्था सार्वभौम है। यही विश्व की श्रृंखला और धर्म का मूल है। यही देवताओं में, ग्रह नक्षत्रों में तथा अन्याय वस्तुओं में वर्तमान है। वैदिक काल में भी इसके प्रति लोगों की श्रद्धा थी। ऋग्वेद की ऋचाएं इसे प्रमाणित करती हैं। इस अलंध्य नैतिक व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहते हैं। वैदिक काल के बाद मीमांसा में इसे अपूर्व कहते हैं। वर्तमान के कर्मों का उपभोग परवर्ती जीवन में अपूर्व के द्वारा ही किया जा सकता है। न्याय वैशेषिक में इसे अदृष्ट कहते हैं, क्योंकि यह दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका प्रभाव परमाणुओं पर भी पड़ता है। वस्तुओं का उत्पादन तथा घटनाओं का उपक्रम इसी के अनुसार होता है। यही नैतिक व्यवस्था आगे चलकर कर्मवाद कहलाती है। कर्मवाद को प्रायः भारत के सभी दर्शन मानते हैं। कर्मवाद के अनुसार उत्कर्ष अर्थात कर्मों के धर्म तथा अधर्म सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। इसके अनुसार कृत प्रणाश तथा अकृत्याभ्युपगम नहीं होता, अर्थात किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता और बिना किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता। हमारे कर्मों के फल का कभी नाश नहीं होता और हमारे जीवन की घटनाएं हमारे अतीत कर्मों के अनुसार ही होती हैं। जैन तथा बौद्ध भी कर्मवाद को मानते हैं। कर्म शब्द के दो अर्थ हैं, एक से कर्म के नियम का बोध होता है और दूसरे अर्थ से कर्म से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका बोध होता है। इसी शक्ति के द्वारा कर्मफल उत्पन्न होते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार कर्म के तीन भेद हैं, पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा संचयमान कर्म। संचित कर्म उस कर्म शक्ति को कहते हैं जो अतीत कर्मों से उत्पन्न होती है किंतु जिसके फलों का प्रारंभ नहीं हुआ रहता। प्रारब्ध कर्म भी पूर्व जीवन में ही उत्पन्न होता है किंतु उसके फलों का प्रारंभ इस जीवन में हो चुका रहता है। वर्तमान शरीर तथा धन संपत्ति आदि प्रारब्ध कर्म के फल हैं। संचयमान या क्रियमान कर्म उसे कहते हैं जिसका संचय वर्तमान जीवन में होता है। डेनमार्क के प्रसिद्ध दार्शनिक हेरोल्ड धर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता। ऐसे विधान में विश्वास का नाम ही धर्म है। इस तरह के विश्वास के कारण ही जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी होते हुए भी धर्म कहे जा सकते हैं। संसार में नैतिक व्यवस्था है, यह विश्वास होने से ही लोगों में आशा का संचार होता है। ऐसी हालत में लोग अपने को ही अपना भाग्य निर्माता समझते हैं। भारतवासी अपने वर्तमान जीवन के दुखों को अपने पूर्ववर्ती जीवन के बुरे कर्मों का परिणाम मानते हैं तथा वर्तमान जीवन के सुकर्मों से अपने भविष्य जीवन को सुखमय बनाने की आशा करते हैं। मनुष्य जीवन में इच्छा की स्वतंत्रता तथा पुरस्कार दोनों ही संभव है। इससे यह स्पष्ट है कि कर्मवाद का अर्थ भाग्यवाद या नियतिवाद नहीं है। पूर्व जन्मकृत कर्म की पूंजीभूत शक्ति का नाम ही दैव है। इस जीवन के प्रबल प्रयत्नों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे जीवन के बद्ध मूल अभ्यासों को नवीन प्रबलतर अभ्यासों के द्वारा दबाया जा सकता है। भारतीय दर्शनों का एक और सामान्य धर्म है जिसका कर्मवाद के साथ गहरा संबंध है। इसके अनुसार संसार मानो एक रंगमंच है जिसमें मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिलता है। जिस तरह रंगमंच पर नाटक के पात्र सज धज कर आते हैं और पात्र भेद के अनुसार नाट्य करते हैं, उसी तरह मनुष्य इस संसार के रंगमंच पर भी शरीर, इंद्रिय आदि उपकरणों से सज्जित होकर आता है तथा योग्यता अनुसार अपना कर्म करता है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना कर्म नैतिक ढंग से करे, जिससे उसका वर्तमान तथा भविष्य सुखमय हो। शरीर, ज्ञानेंद्रिय, बाह्य परिस्थिति आदि विषय ईश्वर से अथवा प्रकृति से तो मिलते हैं, किंतु उनकी प्राप्ति पूर्वार्जित कर्म के अनुसार ही होती है। भारतीय दर्शनों की एक समानता यह भी है कि वे अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान के अभाव से ही शरीर बंधन होता है और दुखों की उत्पत्ति होती है। इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब संसार तथा आत्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त हो। पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना तथा जीव के दुखों को सहना ही मनुष्य के लिए बंधन है। पुनर्जन्म की संभावना का नाश मोक्ष से ही हो सकता है। जैन मत, बौद्ध मत, सांख्य तथा अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जीवन के रहते भी हो सकती है, अर्थात यथार्थ सुख जीवन काल में भी प्राप्त हो सकता है। बंधन से मोक्ष पाने की जो शिक्षा दी गई है, उसका तात्पर्य यह नहीं कि हम संसार से परांगमुख होकर केवल परलोक चिंता में लगे रहें, वरन इसका तात्पर्य यह है कि हम केवल इह लोक तथा इह काल को ही महत्व न दें, अपनी दृष्टि को केवल इस लोक में सीमित न रखें और अदूरदर्शिता से बचें। मनुष्य के दुखों का मूल कारण अज्ञान है, अतः दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति परम आवश्यक है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए केवल तत्व ज्ञान काफी है। तत्व ज्ञान को स्थायी तथा सफल बनाने के लिए दो तरह के अभ्यासों की आवश्यकता है, निधिध्यासन अर्थात स्वीकृत सिद्धांतों का अनवरत चिंतन और दूसरा आत्मसंयम, जीवन के आदर्श को प्राप्त करने के लिए एकाग्र चिंतन तथा ध्यान की इतनी अधिक आवश्यकता है कि भारतीय दर्शन में इनके लिए एक बड़ी पद्धति का विकास हुआ है। इस पद्धति का विस्तृत वर्णन योग दर्शन में मिलता है। बौद्ध, जैन, सांख्य, वेदांत तथा न्याय वैशेषिक दर्शनों में भी इसका वर्णन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। केवल तार्किक युक्ति के द्वारा जो दार्शनिक सिद्धांत स्थापित होते हैं, वे स्थायी नहीं होते, उनका प्रभाव क्षणिक होता है। अतः कोरे तत्व ज्ञान से ही अज्ञान का नाश नहीं होता। भ्रांत संस्कारवश दैनिक जीवन बिताने के कारण हमारा अज्ञान और बद्ध मूल हो जाता है, इसलिए हमारे विचार, वचन तथा कर्म अज्ञान के रंग में रंग जाते हैं। फल यह होता है कि विचार, वचन तथा कर्म से पुष्ट होने के कारण अज्ञान और भी दृढ़तर होता जाता है। ऐसे प्रबल अज्ञान का निराकरण करने के लिए तत्व ज्ञान का निरंतर अनुशीलन आवश्यक है। जिस प्रकार निरंतर सांसारिक प्रपंचों में संलग्न रहने से मिथ्या या संस्कार की पुष्टि होती है, उसी प्रकार विपरीत दिशा में दीर्घकालीन चिंतन एवं अभ्यास के द्वारा ही उनका क्षय तथा नाश हो सकता है। अतः ज्ञान की परिपक्वता के लिए ज्ञान को शरीर, मन और वचन के द्वारा जीवन में उतारने की साधना निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। साधना के बिना न ज्ञान का नाश ही हो सकता है, न तत्व ज्ञान के प्रति हमारा विश्वास ही जम सकता है। सिद्धांतों का एकाग्रचित से मनन करने के लिए तथा उन्हें जीवन में चरितार्थ करने के लिए आत्मसंयम की आवश्यकता है। सोक्रेटिस का कथन है कि ज्ञान ही धर्म है, वर्चू इज नॉलेज, किंतु उनके अनुयायियों का उनसे मतभेद था। उनके अनुयायियों का कथन था कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने से ही वह धर्म नहीं होता है, हमारे कर्म स्वभावतः धार्मिक नहीं होते, उनकी उत्पत्ति बहुधा वासनाओं तथा नीच प्रवृत्तियों के कारण होती हैं। अतः जब तक तृष्णाओं तथा नीच प्रवृत्तियों का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो, तब तक हमारे कर्म पूर्णतया नैतिक या धार्मिक नहीं हो सकते। इस विचार को चार्वाक के अतिरिक्त और सभी भारतीय दर्शन मानते हैं। ठीक ही कहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाय धर्म न च मे निवृत्ति। सांसारिक वस्तुओं के मिथ्या ज्ञान से वासनाओं तथा कुसंस्कारों की उत्पत्ति होती है। उनके वंशीभूत होने के कारण कर्म तथा वचन हमारे सिद्धांतों के अनुसार नहीं होते। भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्य की वासनाओं तथा संस्कारों का भिन्न भिन्न ढंग से वर्णन किया है, किंतु सबों ने राग तथा द्वेष को ही प्रमुख माना है। साधारणतः हमारे कर्म राग द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय राग द्वेष के अनुसार ही कार्यरत होते हैं। इन प्रवृत्तियों के अनुसार बराबर कार्य करते रहने से ये और ही तीव्र हो जाते हैं। संसार संबंधी मिथ्या ज्ञान का तथा राग द्वेष जैसी प्रवृत्तियों का नाश तत्व ज्ञान से ही हो सकता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इंद्रियों के पुराने अभ्यास दूर हो सकते तथा उनका विवेक मार्ग पर चलना संभव हो सकता है। यह सही है कि इंद्रियों का विवेक मार्ग पर चलना नितांत कठिन है, किंतु यह परम वांछनीय है कि इसके लिए अखंड अभ्यास तथा सदाचार की आवश्यकता है। अतः भारतीय दार्शनिक अभ्यास को अत्यधिक महत्व देते हैं। उचित दिशा में अखंड प्रयत्न करना ही अभ्यास है। मन, राग, द्वेष, ज्ञानेन्द्रियों का नियंत्रण ही आत्मसंयम कहलाता है। आत्मसंयम का अर्थ इंद्रियों की वृत्तियों का केवल निरोध करना ही नहीं है, वरन उनकी कुप्रवृत्तियों का दमन कर उन्हें विवेक के मार्ग पर चलाना है। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन आत्मनिग्रह तथा संन्यास ही सिखलाता है और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उच्छेद आवश्यक समझाता है, किंतु यह दोषारोपण युक्ति सम्मत नहीं है। उपनिषद युग के समय से ही भारतीय दार्शनिक यह मानते आ रहे हैं कि यद्यपि मनुष्य जीवन में आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, तथापि मनुष्य का अस्तित्व शरीर, प्राण, मन आदि पर भी निर्भर करता है। छांदोग्य उपनिषद में हम पाते हैं कि श्वेत केतु नामक एक शिष्य को 15 दिन बिना अन्न के रखकर गुरु ने समझाया कि शरीर की पुष्टि पर मन की क्रियाएँ भी निर्भर हैं। अतः ब्रह्म लाभ करने के लिए भी शरीर, इंद्रिय, प्राण आदि की पुष्टि के लिए प्रार्थना की जाती है। आप्यायान्तु मामांग निवाक प्राणश्चक्षु सोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। वे नहीं कह सकते थे कि हमारी प्रवृत्तियों का नाश हो जाए, वरन वे उनके सुधार की शिक्षा देते थे जिसमें हम धार्मिक विचारों का अनुशीलन कर सकें। प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग से हटाने के साथ साथ अच्छे कर्म करने का भी निर्देश रहता था। ऐसे निर्देश हमें योग जैसे कट्टरपंथी मत में भी मिलता है। योग दर्शन में योगांगों के नाम से यम तथा नियम दोनों का उपदेश है। यम तो निवृत्ति मूलक है ही, साथ साथ नियमों के पालन का भी निर्देश है। यम 5 हैं: हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, काम वासना में नहीं पड़ना चाहिए और लोभ नहीं करना चाहिए। इन 5 यमों के नाम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है, किंतु इनके साथ साथ नियमों के पालन का भी निर्देश है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। ये केवल योग दर्शन में ही नहीं वरन अन्य आस्तिक दर्शनों, बौद्ध एवं जैन मतों में भी पाए जाते हैं। अन्य दर्शनों में भी मैत्री, करुणा तथा मुदिता, प्रसन्नता के अनुशीलन करने का उपदेश दिया गया है। गीता में भी इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने की शिक्षा नहीं दी गई है, वरन उन्हें विवेक के अनुसार परिचालित करने का उपदेश दिया गया है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रिय चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम धिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर तथा अपने वश में लाकर आत्मविजयी हो जाते हैं, वे इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी प्रसाद या संतोष प्राप्त करते हैं। चार्वाक के अतिरिक्त और सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दर्शनों में मोक्ष के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति से जीवन के दुखों का नाश हो जाता है, किंतु कुछ दर्शनों के अनुसार मोक्ष से केवल दुखों का नाश ही नहीं होता वरन आनंद की भी प्राप्ति होती है। वेदांत, जैन आदि मतों के अनुसार मोक्ष से आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वानों का कथन है कि बौद्धों का भी यही मत था। भारतीय दर्शन में देश काल का विचार, यह है इसका 7वां टॉपिक। नैतिक तथा आध्यात्मिक विचारों की समानता के साथ साथ भारतीय दर्शनों में यह भी एक सादृश्य है कि वे देश तथा काल को अनादि और अत्यंत विशाल मानते हैं। इसका प्रभाव भारतीय दर्शनों के नैतिक तथा आध्यात्मिक विचारों पर बहुत अधिक पड़ा है। पाश्चात्य देशों के कुछ लोगों का मत था कि संसार की दृष्टि प्रायः 6000 वर्ष पूर्व हुई है तथा केवल मनुष्य के लिए ही हुई है, किंतु वह मत अत्यंत संकीर्ण है। इस मत के अनुसार मनुष्य को अधिक महत्व दे दिया गया है। डार्विन प्रभृति जीव विज्ञान के पंडितों के आविष्कारों के द्वारा सृष्टिवाद का खंडन हो जाता है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार संसार के सभी जीवों की सृष्टि एक साथ नहीं हुई है, वरन उसका क्रमिक विकास हुआ है। इनके विकास में लाखों वर्ष लगे। आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार विश्व बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक है। इसके व्यास की लंबाई करोड़ों किरण वर्षों की मानी जाती है। निखिल विश्व में सूर्य एक कण मात्र है। पृथ्वी उस कण के 10 लाख भागों में एक भाग सा है। ज्योतिर्विज्ञान के विद्वानों का कथन है कि आकाश में जो वाष्प पुंज दृष्टिगोचर होता है उसके एक एक कण के एक एक 100 करोड़ सूर्यों की सृष्टि हो सकती है। देश काल की इस विशालता को समझने में हमारी कल्पना शक्ति पराभूत हो जाती है। पुराणों में भी ऐसा ही वर्णन आया है। यदि इस विशालता का समर्थन आधुनिक विज्ञान से नहीं हुआ होता तो संभव था कि हम इसे कपोल कल्पना मात्र समझते। विष्णु पुराण में विश्व की बृहत्ता का विशद वर्णन किया गया है। इसके अनुसार यह पृथ्वी एक लोक है, 14 लोकों का एक ब्रह्मांड होता है। इन लोकों के मध्य करोड़ों ब्रह्मांड सम्मिलित हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह भारतीय भी काल का वर्णन साधारण लौकिक ढंग से नहीं करते थे। सृष्टि काल की माप के लिए ब्रह्मा का एक दिन मानदंड माना गया है। उनका एक दिन 1000 युगों के अर्थात अर्थात चार 43 करोड़ 2 लाख वर्षों तक कायम रखता है। सृष्टि का अंत होने पर ब्रह्मा की रात का प्रारंभ होता है, इसे प्रलय कहते हैं। इस तरह के रात दिन अर्थात सृष्टि प्रलय आदि अनादिकाल से होते आ रहे हैं। सृष्टि का आदि निर्णय नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सृष्टि का प्रारंभ अमुक समय में हुआ। जो ही समय इसके लिए निर्धारित किया जाएगा वही संदिग्ध होगा, क्योंकि उससे भी पूर्व समय की कल्पना की जा सकती है। और तब क्या था, यह प्रश्न भी उठ सकता है। और तब कुछ नहीं रहने से शून्य से संसार की उत्पत्ति की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अतः भारतीय पंडित सृष्टि क्रम को आदि मानते हैं। वर्तमान सृष्टि के पहले अनेक सृष्टियां हुई हैं तथा अनेक प्रलय भी हुए हैं, अर्थात वर्तमान सृष्टि का प्रारंभ अनेक सृष्टियों तथा प्रलयों के बाद हुआ। चूंकि सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादि है, इसलिए आदि सृष्टि का काल निरूपण बिल्कुल व्यर्थ है। किसी भी अनादि क्रम में आदि का अन्वेषण सर्वथा निरर्थक होता है, क्योंकि अनादि में आदि का अस्तित्व ही नहीं रहता। अनादि विश्व की विशालता की दृष्टि से भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी को अत्यंत नगण्य माना है, सांसारिक जीवन तथा लौकिक वैभव को भी नश्वर तथा महत्वहीन समझा है। अनंत आकाश में पृथ्वी एक बिंदु मात्र है। जीवन मानो काल समुद्र में एक छोटी सी लहरी है। इस समुद्र में जीवन रूपी अनेक लहरियां आती हैं और जाती हैं, किंतु विश्व की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। शताब्दियों तक कायम रहने वाली सभ्यता भी कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। इस भूतल पर एक ही सतयुग नहीं हुआ है। सृष्टि और प्रलय के अनादि क्रम में न मालूम कितने सतयुग आए हैं। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग भी आए हैं। कालचक्र के साथ साथ सभ्यता का विकास और विनाश, उत्थान और पतन होता ही रहता है। इन विचारों का प्रभाव भारतीय तत्व विज्ञान पर बहुत अधिक पड़ा है। दार्शनिकों का मत है कि वर्तमान जगत की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जगत से हुई है। अतः वर्तमान जगत के ज्ञान के लिए पूर्ववर्ती जगत का ज्ञान नितांत आवश्यक है। दूसरा प्रभाव यह भी पड़ा है कि दर्शन को अनंत के अनुसंधान की पूरी प्रेरणा मिली है। धार्मिक विषयों पर भी इन विचारों का काफी प्रभाव पड़ा है, जिससे भारतीय मनुष्य जीवन को व्यापक और निर्लिप्त दृष्टि से देखते हैं। इसी व्यापक दृष्टि से प्रभावित होकर वे इस परिवर्तनशील संसार को शाश्वत नहीं समझते हैं तथा अनित्य की अपेक्षा नित्य पर ही उनका ध्यान लगा रहता है। मनुष्य का क्षुद्र क्षण स्थायी शरीर यद्यपि नगण्य है, तथापि इसके द्वारा आध्यात्मिक साधन करके वह देश काल से अतीत एक शाश्वत शांति और आनंद की अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य का जन्म दुर्लभ संपत्ति है। भगवान बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्यस् पटिलाभो। भागवत में भी कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। भारतीय इस दूसरा चैप्टर का नाम है भारतीय दर्शनों का सिंहावलोकन। इसका पहला टॉपिक है चार्वाक दर्शन। चार्वाक जड़वादी को कहते हैं। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अनुमान शब्द आदि जितने अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं सभी संदिग्ध या भ्रममूलक हैं। अतः प्रत्यक्ष से ज्ञात वस्तुओं के अतिरिक्त और भी किसी वस्तु के अस्तित्व को नहीं माना जा सकता। प्रत्यक्ष के द्वारा हमें भौतिक जगत का ज्ञान मिलता है। जड़ जगत 4 प्रकार के भौतिक तत्वों से बना हुआ है, वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी। यही 4 प्रकार के भौतिक तत्व हैं। इन तत्वों का ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। संसार में जितने द्रव्य हैं, सभी इन्हीं चार तत्वों से बने हुए हैं। आत्मा के अस्तित्व के लिए कोई भी प्रमाण नहीं है। मनुष्य पूर्णतया भूतों से ही बना हुआ है। मैं स्थूल हूँ, मैं क्षीण हूँ, मैं पंगु हूँ, इन वाक्यों से यह बिल्कुल साफ है कि मनुष्य और उसके शरीर में कोई भेद नहीं है। मनुष्य में चैतन्य है, किंतु चैतन्य मनुष्य शरीर का विशेष गुण है। चैतन्य की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से ही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भौतिक तत्व अचेतन होता है, अतः उससे बनी चीजें चेतन नहीं हो सकती, किंतु यह सत्य नहीं है। कई वस्तुओं के मिलाने से एक नई वस्तु का उत्पत्ति होता है। इस तरह से उत्पन्न वस्तुओं में नए गुणों का भी आविर्भाव हो सकता है। एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में नए नए गुणों की उत्पत्ति हो सकती है। यद्यपि लाल रंग न तो पान में, न सुपारी में, न चूने में है, फिर भी उनको एक साथ चबाने से लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। गुड़ में मादक गुण नहीं है, फिर भी गुड़ के सड़ जाने से उसमें मादक गुण की उत्पत्ति हो सकती है। इसी तरह भौतिक तत्वों का जब विशेष ढंग से मिश्रण होता है, तब जीव शरीर का निर्माण होता है और उसमें चैतन्य का भी संचार हो जाता है। शरीर के नष्ट होने पर चैतन्य भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु के बाद कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, अतः मृत्यु के बाद कर्मों के फल भोग की कोई संभावना ही नहीं है। यह किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता कि मृत्यु के बाद मनुष्य का कुछ भी अवशिष्ट रहता है। ईश्वर का अस्तित्व भी सत्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। ईश्वर का अस्तित्व अप्रमाणित होने पर संसार की सृष्टि का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। चार्वाक मत के अनुसार संसार का निर्माण भूतों के सम्मिश्रण से स्वतः होता है। इन विचारों से यह भी स्पष्ट है कि ईश्वर की आराधना तथा स्वर्ग की कामना निरर्थक बातें हैं। वेदों में तथा पुरोहितों में किस प्रकार की श्रद्धा रखना मूर्खता है। पुरोहित तो मनुष्य की श्रद्धा भावना से अनुचित लाभ उठाकर अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि अधिक से अधिक सुख प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बनाएं। अन्य लक्ष्यों की अपेक्षा सुख प्राप्ति ही अधिक निश्चित है। सुखों का परित्याग इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह दुखों से मिले रहते हैं। भूसे के कारण अन्न का परित्याग नहीं किया जा सकता है। पशुओं के द्वारा चरे जाने के डर से अनाज का बोना नहीं छोड़ा जाता है। जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाने का तथा दुखों से अधिक दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। संक्षेप में उनका सिद्धांत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत। दूसरा टॉपिक है जैन दर्शन। जैन मत का आरंभ ऐतिहासिक युग के पूर्व ही हुआ है। जैन मत के प्रवर्तकों का एक लंबा क्रम था। उसमें 24 तीर्थकर थे। ये मुक्त होते थे, ये अपने मत का प्रचार भी किया करते थे। वर्धमान इस क्रम के 24वें तीर्थकर थे। वे महावीर के नाम से भी विख्यात हैं। वे गौतम बुद्ध के समसामयिक थे। हम देख चुके हैं चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इनका कथन है कि अनुमान और शब्द को प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनसे कभी कभी यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता है। जैन दार्शनिक इन विचारों को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि उपयुक्त युक्ति के अनुसार तो प्रत्यक्ष को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष भी कभी कभी भ्रमपूर्ण होता है। चार्वाक अनुमान का विरोध तो करते हैं, किंतु स्वयं अनुमान का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ अनुमान भ्रममूलक हैं, अतः सभी अनुमान भ्रममूलक हैं। क्या यह अनुमान नहीं है? वे यह भी कह सकते हैं कि हम जिन वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं है, अर्थात अमुक वस्तु दृष्टिगोचर नहीं है, अतः उसका अस्तित्व नहीं है। क्या यह अनुमान नहीं है? जैन दार्शनिक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और शब्द को भी प्रमाण मानते हैं। अनुमान जब तर्क विज्ञान के नियमों के अनुसार होता है, तो उससे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। शब्द प्रमाण तब सत्य होता है जब वह साप्त अर्थात विश्वास योग्य पुरुषों का वाक्य होता है। जैनों के अनुसार आध्यात्मिक विषयों का यथार्थ ज्ञान प्रारंभ में प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। इनके लिए सर्वज्ञ तथा मुक्त जिनों या तीर्थकरों के उपदेश ही प्रमाण है। इन्हीं तीन प्रमाणों के आधार पर जैन दर्शन अवलंबित है। प्रत्यक्ष के द्वारा भौतिक द्रव्यों का ज्ञान होता है। चार्वाक की तरह जैन भी मानते हैं कि भौतिक द्रव्य चार प्रकार के तत्वों के मिश्रण से बनते हैं। इन तत्वों के अतिरिक्त अनुमान के द्वारा आकाश, काल, धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है। भौतिक द्रव्यों की स्थिति के लिए स्थान आवश्यक है। इस युक्ति से आकाश का अस्तित्व सिद्ध होता है। द्रव्यों की अवस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन काल के बिना नहीं हो सकता। इस युक्ति से काल का अस्तित्व सिद्ध होता है। धर्म और अधर्म क्रमशः गति तथा स्थिति के कारण हैं। इनका भी अस्तित्व निर्विवाद है, क्योंकि किसी अनुकूल कारण के बिना द्रव्यों में गति या स्थिति नहीं आ सकती। धर्म और अधर्म को यहाँ सामान्य अर्थ में नहीं लेना चाहिए, वरन एक विशेष अर्थ में लेना चाहिए। यहाँ धर्म और अधर्म क्रमशः गति और स्थिति के कारण के अर्थ में व्यवहित होते हैं। भौतिक द्रव्य पुद्गल आकाश काल धर्म तथा अधर्म के अतिरिक्त और भी एक प्रकार का द्रव्य है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा प्रमाणित है कि प्रत्येक सजीव द्रव्य में एक चेतन वस्तु या जीव है। नारंगी के गुणों अर्थात उसके रंग आकार गंध को देखकर हम कहते हैं कि हम नारंगी को देख रहे हैं। उसी प्रकार जब हम सुख दुख आदि अनेक आत्मगत गुणों का अनुभव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने जीव या आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। चैतन्य की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से नहीं हो सकती। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जड़ पदार्थों के संयोग से चैतन्य का प्रादुर्भाव हुआ हो। चार्वाक मत के अनुसार भी हम इसे सही नहीं मान सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है और ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं है जिनमें भौतिक पदार्थों के योग से चेतना की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ हो। जीव के अस्तित्व को इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, यदि कोई चेतन शक्ति होती तो केवल भौतिक तत्वों के मिश्रण से सजीव शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। साथ साथ बिना जीव के परिचालन से शरीर तथा इंद्रिय नियमित ढंग से कार्य भी नहीं कर सकते हैं। अतः जितने सजीव शरीर हैं उतने ही जीव हैं। जैन के अनुसार केवल मनुष्य तथा पशु पक्षियों में जीव नहीं है, वरन पेड़ पौधों तथा धूलिकणों में भी जीव हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी धूलिकणों का अन्यान्य भौतिक पदार्थों में भी जीवाणु पाए जाते हैं। सभी जीव समान प्रकार से चेतन नहीं है। वनस्पतियों तथा मिट्टी के टुकड़ों में भी जीव पाए जाते हैं। वे केंद्रीय होते हैं, उन्हें केवल स्पेशेंद्रिय होता है अर्थात उनका केवल स्पर्श बोध होता है। कुछ निम्न श्रेणी के जीवों को दो इंद्रिय होते हैं, कुछ को क्रमशः तीन तथा चार इंद्रिय भी होते हैं। मनुष्य को तथा उच्च वर्ग के जंतुओं को पांच इंद्रियां होती हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा वस्तु ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु इंद्रिय जितना भी समृद्ध क्यों न हो, शरीर बंधन में फंसे हुए जीव का ज्ञान सीमित ही होगा। इसके चलते जीव की शक्ति भी कम रहती है तथा यह नाना प्रकार के दुखों से आक्रांत रहता है। प्रत्येक जीव को अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर्य और अनंत सुख पाने की शक्ति है। ये जीव के स्वाभाविक गुण हैं। जिस तरह मेघों के द्वारा सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, उसी तरह जीव का आंतरिक स्वरूप कर्मों के कारण छिप जाता है। जीव के कर्म तथा उसकी इच्छाएं पुद्गल को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसका फल होता है कि जिस तरह किसी दीपक या सूर्य का प्रकाश धूलिकणों से आच्छादित हो जा सकता है, उसी तरह जीव का स्वरूप पुद्गल के संपर्क से छिप जाता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कर्म के अनुसार पुद्गल योग से जीव का बंधन होता है। कर्षों को हटाकर जीव बंधन मुक्त हो सकता है तथा अपने स्वाभाविक गुणों को प्रकाशित कर सकता है। तीर्थकरों के जीवन तथा उनके उपदेश इस बात के प्रमाण हैं कि मोक्ष प्राप्ति सर्वथा संभव है। वे मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन का भी ज्ञान करते हैं। बंधन मुक्त होने के लिए तीन उपायों की आवश्यकता है। पहला सम्यक दर्शन अर्थात जैन महात्माओं के उपदेशों के प्रति श्रद्धा का भाव, दूसरा सम्यक ज्ञान अर्थात उनके उपदेशों का यथार्थ बोध, और तीसरा सम्यक चरित्र अर्थात नैतिक नियमों के अनुकूल आचरण। सम्यक चरित्र का अर्थ यह है कि जीवन में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का पालन करना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक शास्त्र के सम्मिलित प्रयोग से वासनाओं का नियंत्रण होता है तथा उन कर्मों का भी नाश होता है जो जीव को पुद्गलबद्ध किए रहते हैं। इस तरह विघ्नों के हट जाने पर जीवन का अनंत चतुष्टय अर्थात उसका अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत शक्ति तथा अनंत आनंद प्रस्फुटित हो उठता है। यही मोक्ष की अवस्था है। जैन ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर के स्थान पर ये लोग तीर्थकरों को मानते हैं, क्योंकि तीर्थ भी ईश्वर की तरह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान होते हैं। जैन इन्हें जीवन के आर्ष स्वरूप समझते हैं। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना जैन धर्म का एक विशेष गुण है। इसके साथ साथ जैन दर्शन में अन्यान्य मतों के प्रति समादर का भाव भी विद्यमान है। जैन दार्शनिकों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मक होती है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार करने पर मालूम होता है कि एक ही वस्तु के अनेक धर्म हैं। कोई वस्तु एक दृष्टि से भावात्मक है तथा दूसरी दृष्टि से अभावात्मक। किसी वस्तु के संबंध में हम जो कुछ विचार करते हैं उसकी सत्यता हमारी विशेष दृष्टि पर निर्भर करती है। अतः हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे ज्ञान तथा हमारे विचार किस तरह सीमित हुआ करते हैं। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी विषय का कोई एक मत ही एकांत सत्य है। हम लोगों को बहुत सतर्क होकर ही किसी विचार को प्रकट करना चाहिए, जिससे उसमें कोई असत्यता आ जाने की आशंका न रहे, बल्कि हमें अपनी उक्तियों के साथ साथ जोड़ देना चाहिए, जिससे अशुद्धि की कोई संभावना ही न रहे। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि दूसरे के मत भी सत्य हो सकते हैं। जैन दर्शन वस्तुवादी है क्योंकि यह बाह्य जगत के अस्तित्व को मानता है। वह बहुत सत्तावादी है क्योंकि वह अनेक तत्वों को मानता है। वह अनिश्वरवादी है क्योंकि वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। मेरा तीसरा टॉपिक है बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के उपदेश से बौद्ध दर्शन की उत्पत्ति हुई। गौतम बुद्ध मनुष्य के रोग, जरा, मृत्यु तथा अन्याय दुखों को देखकर अत्यंत पीड़ित हुए थे। जीव के दुखों के कारण को समझने तथा उनको दूर करने के उपायों को जानने के लिए उन्होंने वर्षों तक अध्ययन, तप और चिंतन किया। अंत में उन्होंने बोधि या ज्ञान प्राप्त किया, जिसका सार उनके चार आर्य सत्यों में पाया जाता है। वे सत्य ये हैं: पहला, दुख है; दूसरा, दुख का कारण है; तीसरा, दुख का अंत है; और चौथा, दुख दूर करने का उपाय है। दुख है, इस सत्य को किसी न किसी रूप में सभी मानते हैं, किंतु बुद्ध देव को सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा यह अनुभव हुआ कि दुख केवल विशेष अवस्थाओं में ही नहीं, बल्कि संसार के सभी जीवों की सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। जो वस्तु या तो अनुभूति सुखद मालूम पड़ती है, वह भी वास्तव में दुखद ही है। दूसरा सत्य है कि दुख का कारण है। कारण तत्व के अनुसंधान के द्वारा महात्मा बुद्ध इस सिद्धांत पर पहुंचे हैं। उनका कथन है कि संसार में भौतिक या आध्यात्मिक जो भी वस्तु है, वह किसी कारण ही से उत्पन्न है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अकारण से उत्पन्न हो। अतः संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सभी परिवर्तनशील है। इस प्रकार हमारे जन्म मरण का भी कारण है, हमारा जन्म ग्रहण करना ही उसका कारण है। हमारे जन्म का कारण हमारी तृष्णा है, जो हमें सांसारिक विषयों की ओर खींचती है। हमारी तृष्णा ही हमें विषय लोलुप बनाती है। इसका कारण हमारा अज्ञान है। यदि हमें विषयों का ठीक ठीक ज्ञान हो और यदि हम समझें कि वे कितने क्षणिक और दुखद हैं, तो उनके प्रति हमारी तृष्णा ही न लगे, तब हमारा पुनर्जन्म न हो और इस तरह दुखों का भी अंत हो जाए। तीसरा सत्य है कि दुखों का अंत है, यह तो स्पष्ट है। दुखों के जब कारण हैं, तो कारणों के नष्ट होने पर दुखों का अंत होना निश्चित है। चौथा सत्य है कि दुख को दूर करने के उपाय हैं। इसे अष्टमार्ग कहते हैं क्योंकि इसमें आठ साधन हैं। पहला, सम्यक दृष्टि; दूसरा, सम्यक संकल्प; तीसरा, सम्यक वाक्; चौथा, सम्यक कर्मांत; पांचवा, सम्यक आजीव; छठवां, सम्यक व्यायाम; सातवां, सम्यक स्मृति; और आठवां, सम्यक समाधि। ये आठ साधन अविद्या तथा तृष्णा को दूर करते हैं। इनके द्वारा निर्मल बुद्धि, दृढ़ता तथा शांति मिलती है। इस प्रकार दुख का पूर्ण विनाश होता है और पुनर्जन्म की संभावना नहीं रह जाती है। ऐसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश इन्हीं चार आर्य सत्यों में निहित हैं। इन उपदेशों से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का ध्यान दार्शनिक समस्याओं के समाधान पर उतना नहीं था, जितना जीवन के दुखों को दूर करने पर था। समाधान, जब मनुष्य जरा मरण के दुखों से त्रस्त रहता है, उस समय अप्रत्यक्ष तत्वों की विवेचना करना केवल समय को नष्ट करना है। लेकिन शुष्क तर्क से दूर रहते हुए भी वे दार्शनिक विचार से अलग नहीं रहे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से भी पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने ही निम्नोक्त दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला, सभी विषयों का कारण है, अर्थात कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्वयंभूत हो। दूसरा, सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, ज्यों ज्यों उसके कारणों में परिवर्तन आता जाता है, त्यों त्यों उन वस्तुओं में भी परिवर्तन होता जाता है। कुछ भी नित्य नहीं है, अतः इन परिवर्तनशील धर्मों के अतिरिक्त किसी द्रव्य के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है, किंतु वर्तमान जीवन का क्रम चलता रहता है। वर्तमान जीवन से कर्म के अनुसार आगामी जीवन की उत्पत्ति होती है। जिस तरह एक वृक्ष अपने बीज के द्वारा दूसरे बीज को उत्पादित करता है, स्वयं सूख जाता है किंतु दूसरा कायम रहता है, उसी तरह एक जीवन के कर्म द्वारा दूसरे जीवन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अविरत प्रवाह चलता रहा है। भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में भी महात्मा बुद्ध के अनेक अनुयायी हुए थे। अनुयायियों ने बुद्ध की शिक्षाओं के अंतर्निहित दार्शनिक विचारों की पूरी पूरी व्याख्या की है। आगे चलकर इन अनुयायियों के अनेक संप्रदाय बन गए। उनमें भारत के 4 संप्रदाय विख्यात हैं। यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय देंगे। पहला, माध्यमिक मत या शून्यवाद। इस मत के अनुसार यह संसार शून्य है, बाह्य तथा अंतर सभी विषय असत हैं, इसीलिए इस मत को शून्यवाद कहते हैं। दूसरा, योगाचार मत या विज्ञानवाद। इस मत के अनुसार सभी बाह्य पदार्थ असत्य हैं। जो वस्तु बाह्य दिख पड़ती है वह चित्त की एक प्रतीति मात्र है, किंतु चित्त के अस्तित्व में भी कोई संदेह नहीं हो सकता। चित्त का अस्तित्व नहीं है, यह कथन ही विरोधात्मक है, क्योंकि वह स्वयं चित्त का एक विचार है। चित्त का विचार चित्त के बिना नहीं हो सकता। यदि आभ्यंतर कोई वस्तु नहीं है तो विचार भी नहीं हो सकता। अतः चित्त को अस्वीकार करने से वध तो व्याघात हो जाता है। इस मत को विज्ञानवाद कहते हैं। तीसरा, स्वतांत्रिक मत। इस मत के अनुसार बाह्य और आभ्यंतर दोनों सत्य हैं। जितनी वस्तुएं बाह्य प्रतीत होती हैं वे यदि असत्य हों तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, बल्कि मन ही उसके लिए पर्याप्त होता है। किंतु अपनी इच्छा अनुसार मन किसी वस्तु का अवलोकन नहीं कर सकता। हम जहां कहीं जिस समय में बाह्य को देखना चाहें तो संभव नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि बाह्य को देखने के समय हमारे मन में जो बाह्य की एक प्रतीति है वह कल्पित नहीं है, वरन उसका अस्तित्व वही स्थित पर निर्भर करता है, अर्थात किसी विषय पर निर्भर करता है। किसी वृक्ष को जब हम देखते हैं तो वस्तुतः वृक्ष के मानसिक आकार ही को प्रथमतः प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उस आकार से उसके कारण अर्थात बाह्य वृक्ष का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार हम बाह्य वस्तुओं का अनुमान कर सकते हैं, इसे बाह्यानुमेयवाद कहते हैं। चौथा, वैभाषिक मत। इस मत में तथा स्वतांत्रिक मत में बहुत कुछ समानता है। दोनों मतों के अनुसार मानसिक प्रतीतियां तथा बाह्य सत्ताएं सभी सत्य हैं, किंतु किस प्रकार बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है इसमें दोनों में मतभेद है। वैभाषिकों के अनुसार बाह्य वस्तुओं को ही प्रत्यक्ष देखते हैं। बाह्य वस्तुओं का ज्ञान हमें मानसिक चित्रों या प्रतिरूपों के द्वारा अनुमान से नहीं होता। यदि कभी किसी बाह्य वस्तु का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता तो यह कभी संभव नहीं है कि मानसिक प्रतिरूपों के द्वारा हमें उनका अनुमानिक ज्ञान भी हो सके। इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। धार्मिक प्रश्नों को लेकर बौद्ध मत में 2 प्रसिद्ध संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ है, हीनयान और महायान। हीनयान अधिकतर दक्षिण भारत, लंका, ब्रह्मा, श्याम में प्रचलित है। महायान मुख्यतः तिब्बत, चीन तथा जापान में प्रचलित है। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद महायान के अंतर्गत और स्वतांत्रिक तथा वैभाषिक हीनयान के अंतर्गत हैं। दोनों संप्रदायों में इस बात को लेकर मतभेद है कि निर्वाण का क्या उद्देश्य है। हीनयान के अनुसार निर्वाण इसलिए अभीष्ट है कि उसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने दुखों का अंत कर सकता है, किंतु महायान के अनुसार निर्वाण का उद्देश्य केवल अपना ही अंत करना नहीं है, वरन पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, जिसकी सहायता से दुखग्रस्त सभी प्राणियों को दुख से मुक्त किया जा सके। चौथा टॉपिक है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। न्याय वस्तुवादी दर्शन है। इसका प्रतिपादन विशेषतः युक्तियों के द्वारा हुआ है। इसके अनुसार 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। वस्तुओं के साक्षात या आरोप ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वस्तु तथा ज्ञानेंद्रिय के संयोग से होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान बाह्य या अंतर हो सकता है। जिस विषय का प्रत्यक्ष होता है उसका संयोग यदि आँख, कान जैसे बाह्य इंद्रियों से हो तो उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, किंतु यदि केवल मन से संयोग हो तो उसे अंतर या मानव प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान केवल इंद्रिय के द्वारा नहीं होता, यह किसी ऐसे लिंग या साधन के ज्ञान पर निर्भर करता है जिससे अनुमित वस्तु या साध्य का एक नियम संबंध रहता है। साधन साध्य के नियम या अविभाज्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अनुमान में कम से कम 3 वाक्य होते हैं तथा अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। इन पदों को पक्ष, साध्य तथा साधन या लिंग कहते हैं। पक्ष उसे कहते हैं जिसमें लिंग का अस्तित्व मालूम है और साध्य का अस्तित्व प्रमाणित करना है। साध्य उसे कहते हैं जिसके अस्तित्व पक्ष में सिद्ध करना है। साधन उसे कहते हैं जिसका साध्य के साथ नियत साहचर्य हो और जो पक्ष में वर्तमान रहे। जैसे यह पर्वत वहिमान है क्योंकि वह धूममान है। जो धूममान है वह वहग्निमान है। यहाँ पर्वत पक्ष है, वहग्नि साध्य है तथा धूम साधन है। उपमान में संज्ञा तथा संज्ञी के संबंध का ज्ञान होता है। सादृश्य ज्ञान के द्वारा जो संज्ञा और संज्ञी अर्थात नाम और नामी का संबंध स्थापित होता है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि गवय का केवल नाम रहे, यह विदित रहे कि गवय का आकार प्रकार गाय के सदृश होता है तो गवय को प्रथम बार भी देखकर समझा जा सकता है कि यह गवय है। ऐसा ज्ञान उपमान के द्वारा ही होता है। आप्त अर्थात विश्वास योग पुरुषों की उक्तियों से अज्ञात वस्तुओं के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। ऐतिहासिक कहते हैं कि महाराज अशोक भारत के सम्राट थे। इस कथन को हम स्वीकार करते हैं यद्यपि हमारा उनके साथ कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। यहाँ शब्द ही प्रमाण है। न्यायिक इन 4 के अतिरिक्त और किसी प्रमाण को नहीं मानते। उनके अनुसार अन्य सभी प्रमाण इन्हीं 4 प्रमाणों पर टिके हुए हैं। न्याय दर्शन के अनुसार निम्नोक्त विषय प्रमेय कहे जाते हैं। आत्मा, देह, इंद्रिय तथा उनके द्वारा ज्ञातव्य विषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख तथा अपवर्ग। अन्यान्य भारतीय दर्शनों की तरह न्याय का भी लक्ष्य आत्मा को शरीर, इंद्रियों तथा सांसारिक विषयों के बंधन से मुक्त करना है। आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। शरीर का निर्माण भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से होता है। मन अणु है, सूक्ष्म, नित्य तथा अविभाज्य। मन आत्मा के लिए सुख दुख आदि मानसिक गुणों के अनुभव के निमित्त एक कारण है। अतः मन को अतिंद्रिय भी कहते हैं। जब आत्मा को इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु से संबंध होता है तो उसमें चैतन्य का संचार होता है। चैतन्य आत्मा का कोई नित्य गुण नहीं है, यह आगंतुक गुण है। जब मन और इंद्रियों के द्वारा आत्मा किसी विषय से संबंध होता है तभी उस विषय का चैतन्य या ज्ञान आत्मा को होता है। मुक्त होने पर आत्मा इन संपर्कों से रहित हो जाती है, ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। मन परमाणु के सदृश सूक्ष्मतम है किंतु आत्मा विभू, अमर तथा नित्य है। आत्मा ही सांसारिक विषयों में आसक्त या उनसे अनासक्त होता है। यही विषयों से राग या द्वेष करता है। कर्मों के अच्छे बुरे फलों का उपभोग इसी को करना पड़ता है। मिथ्या ज्ञान, राग, द्वेष तथा मोह से प्रेरित आत्मा अच्छी या बुरी कर्म करती है। उन्हीं के कारण आत्मा को पाप में या दुर्ग्रस्त होना पड़ता है। उन्हीं के कारण उसे जन्म मरण के चक्रों में पढ़ना पड़ता है। तत्व ज्ञान के द्वारा जब सभी दुखों का अंत हो जाता है तो मुक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था को अपवर्ग कहते हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि यह अवस्था आनंदमय होती है किंतु न्यायिक इसे नहीं मानते। मुक्त होने पर आत्मा को चैतन्यहीन ही हो जाती है, तब सुख या दुख किसी की अनुभूति नहीं रह सकती। न्यायिक ईश्वर के अस्तित्व को अनेक युक्तियों से सिद्ध करते हैं। ईश्वर संसार के सृजन पोषण तथा संहार के आदि प्रवर्तक हैं। ईश्वर ने विश्व का निर्माण शून्य से नहीं किया बल्कि परमाणु, देह, काल, आकाश, मन तथा आत्मा आदि उपादानों से किया है। जीव अपने अपने पुण्यमय या पापमय कर्मों के अनुसार सुख या दुख का उपभोग कर सकें इसके लिए संसार की सृष्टि हुई है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए निम्नोक्त युक्ति दी जाती है। पर्वत, समुद्र, सूर्य, चंद्र आदि संसार के जितने पदार्थ हैं सभी परमाणु में विभाजित हो सकते हैं। अतः उन पदार्थों का निर्माण किसी कर्ता के द्वारा अवश्य हुआ है, पर मनुष्य संसार का निर्माता नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सीमित है। वह परमाणु जैसी सूक्ष्म तथा अदृश्य वस्तुओं का सम्मिश्रण नहीं कर सकता। इस संसार का निर्माता अवश्य कोई चेतन आत्मा है जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा संसार की नैतिक व्यवस्था का संरक्षक है। वही ईश्वर है। ईश्वर ने इस संसार को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं बनाया है बल्कि अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए बढ़ाया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार में केवल सुख है एवं दुख का सर्वथा अभाव है। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, अतः वह इच्छा या बुरा दोनों प्रकार के कर्म कर सकता है तथा तदनुसार सुख या दुख का भागी होता है। किंतु परमात्मा की दया तथा उसके मार्गदर्शन से मनुष्य अपने आत्मा तथा विश्व का तात्विक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तत्पश्चात अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। मेरा पांचवा टॉपिक है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। उनका दूसरा नाम उलूक था। न्याय दर्शन के साथ वैशेषिक की बड़ी समानता है। उसका भी उद्देश्य प्राणियों को अपवर्ग प्राप्त करना है। यह सभी प्रमेयों को अर्थात संसार की सभी वस्तुओं को कुल सात पदार्थों में विभक्त करता है। वे पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। द्रव्य गुणों तथा कर्मों का आश्रय है तथा उनसे भिन्न है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं, क्षिति, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन। इनमें प्रथम 5 भौतिक हैं। उनके गुण क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द हैं। क्षिति, जल, अग्नि तथा वायु क्रमशः 4 प्रकार के परमाणुओं से बने हुए हैं। ये परमाणु भौतिक हैं। इनका विभाजन तथा नाश नहीं हो सकता। परमाणुओं की सृष्टि नहीं होती, वे शाश्वत हैं। किसी भौतिक पदार्थ के सबसे छोटे छोटे टुकड़ों को, जिनका और अधिक विभाजन नहीं हो सकता, परमाणु कहते हैं। आकाश, दिक तथा काल अप्रत्यक्ष द्रव्य हैं। ये एक एक हैं, नित्य हैं तथा विभू हैं। मन नित्य है किंतु विभू नहीं है। विभू अर्थात सर्वव्यापी। यह परमाणु की तरह निर्वयव है। यह अतिंद्रिय है। यह बुद्धि, भावना तथा संकल्प जैसी मानसिक क्रियाओं का सहायक होता है। मन से एक साथ एक ही अनुभूति हो सकती है, क्योंकि यह परमाणु की तरह अत्यंत सूक्ष्म होता है। आत्मा शाश्वत तथा सर्वव्यापी द्रव्य है। यह चैतन्य की सभी अवस्थाओं का आश्रय है। मनुष्य को मन के द्वारा अपने आत्मा की अनुभूति होती है। सांसारिक वस्तुओं के निर्माता के रूप में ईश्वर अर्थात परमात्मा का अस्तित्व अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। गुण उसे कहते हैं जो केवल द्रव्यों में पाया जाता है। गुण को गुण नहीं होता, न उसे कर्म ही होता है। द्रव्य निरपेक्ष है, किंतु गुण को द्रव्य की अपेक्षा रहती है। कुल 24 प्रकार के गुण हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, संस्कार, धर्म तथा अधर्म। कर्म गत्यात्मक होता है। गुण के सदिश यह भी केवल द्रव्यों में पाया जाता है। 5 प्रकार के कर्म होते हैं, उच्छेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। सामान्य किसी वर्ग के साधारण धर्म को कहते हैं। सभी गांवों में एक समानता है, जिसके कारण उन सबों की एक जाति होती है तथा उन्हें अन्य जातियों से पृथक समझा जाता है। इस सामान्य को गोत्र कहते हैं। किसी गौ के जन्म से न तो गोत्र की उत्पत्ति होती है, न उसके मरण से उसका विनाश ही होता है। अतः गोत्र नित्य है। नित्य द्रव्यों के पार्थक्य के मूल कारण को विशेष कहते हैं। साधारणतः वस्तुओं की भिन्नता उनके अवयवों तथा गुणों के द्वारा की जाती है, किंतु एक प्रकार से परमाणुओं का पारस्परिक विभेद किस तरह किया जाएगा? प्रत्येक परमाणु की अपनी विशेषता होती है, अन्यथा सभी पार्थिव परमाणुओं के पार्थिव होने के कारण विभेद संभव नहीं होता। परमाणुओं की जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषों को मानने के कारण ही इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। समवाय स्थायी या नित्य संबंध को कहते हैं। अवयवी का अवयवों के साथ, गुण या कर्म के द्रव्य के साथ, सामान्य का व्यक्तियों के साथ समवाय का संबंध पाया जाता है। वस्त्र का अस्तित्व उसके धागों में है। धागों के बिना वस्त्र रह नहीं सकता। हरित वर्ण, मधुर स्वाद, सुगंध आदि गुणा तथा सभी प्रकार के कर्म तथा गति द्रव्य ही में आश्रित हैं। द्रव्य के बिना गुण तथा कर्म नहीं टिक सकते हैं। इस तरह के नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। नहीं रहने को अभाव कहते हैं। यहाँ कोई सर्प नहीं है, वह गुलाब लाल नहीं है, शुद्ध जल में गंध नहीं होती। ये वाक्य क्रमशः सर्प, लाल रंग और गंध का उपयुक्त स्थानों में अभाव व्यक्त करते हैं। अभाव 4 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव तथा अनन्या भाव। प्रथम तीन प्रकार के अभाव को संसर्गा भाव कहते हैं। संसर्गा भाव में दो वस्तुओं के संसर्ग का अभाव रहता है। किसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले उपादान में जो उसका अभाव रहता है उसे प्राग भाव कहते हैं। कुंभकार के द्वारा बर्तन निर्माण के पहले मिट्टी में बर्तन का अभाव रहता है। किसी वस्तु के ध्वंस हो जाने के बाद जो उस वस्तु का अभाव हो जाता है उसे ध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे घड़े के फूट जाने पर उसके टुकड़ों में घड़े का अभाव होता है। दो वस्तुओं में अतीत वर्तमान तथा भविष्य अर्थात सर्वदा के लिए जो संबंध का अभाव रहता है उसे अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव। जब दो वस्तुओं में पारस्परिक भेद रहता है तो उसे अनन्या भाव कहते हैं। जैसे घट और पट दो पृथक वस्तुएं हैं। घट पट नहीं है और न पट ही घट है। जैसे घट और पट दो पृथक वस्तुएं हैं, एक का दूसरा नहीं होने का नाम अनन्या भाव है। ईश्वर तथा मोक्ष के विषय में वैशेषिक तथा न्याय मतों में पूरा साम्य है।